वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 28 अमाध्यत् इन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिः द्विजातयः मरुतः परिवेष्टार विश्वदेवाः सभासदः अमाद्य इन्द्र सोमेन दक्षिणाभि द्विजातय मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवा सभासद अमाजतिन्द्र सोमेन दक्षिणाभि द्विजातय मरुतः परिवेष्टारो विश्वदेवा सभासदः अमाजतिन्द्र सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातय मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवा सभासद बोलिए माताओं में से अमाजत मदांध हो गया, इंद्रह इंद्र सोमेन सोमरस का पान करके, दक्षिणा भी पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त करके, द्विजातयः ब्राह्मण वर्ग मरुतः मरुतो ने परिवेष्टारः भोज्य पदार्थ परोसा, विश्वेदेवाः विश्वेदेवा सभासदः सभा के सदस्य। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है, उस यज्ञ में सोमरस की अधिक मात्रा पीने से इंद्र मदांध हो गया, ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली जिससे वे संतुष्ट थे। उस यज्ञ में मरुतों को प्रधान देवताओं ने खाना परोसा, और विश्वदेव सभा के सदस्य थे। तात्पर्य इस प्रकार से है, मरुत द्वारा संपन्न यज्ञ से सभी लोग विशेषतया ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रसन्न थे। मरुत द्वारा संपन्न यज्ञ से सभी लोग विशेषतया ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रसन्न थे। ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मदपान करने में, अतएव सभी लोग अपने अपने प्राप्तियों से संतुष्ट थे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रति दिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद भागवत के 10 तत्वों के अंतर्गत ईशानु कथा में बताया गया है। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, शील प्रभुपाद की। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। भागवत नवम स्कंद ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ होता है किस प्रकार से यदि कोई जीव भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करने से भगवान का किस प्रकार से उस भक्त के ऊपर अनुग्रह होता है, यह कथा नवम स्कंद में बताई गई है। इस नवम स्कंद में अनेक सूर्य वंश और सोम वंश के राजा महाराजाओं के अद्भुत चरित्रों का वर्णन है। प्रायः भागवत पढ़ने वाले को मन में यह प्रश्न हो सकता है कि यह कथा गंगा के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। महाराज परीक्षित के जीवन में बहुत कम दिन बचे थे और उस बचे हुए कम दिनों में यह सब सुनाने की क्या जरूरत है, इसका पुत्र ये, इनका ये, इनका ये। भक्तों को भी प्राय नींद आ जाती है सुनने में। ये वंश परंपरा सुनाने की क्या आवश्यकता हुई? परंतु इस बात को महाराज परीक्षित स्वयं दशम स्कंद के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम्। ये जितने भी राजा महाराजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, ये समस्त राजाओं के चरित्र अद्भुत माने गए हैं। अर्थात हमें यह नहीं समझना चाहिए इन राजाओं के चरित्र हमारी तरह कोई साधारण राजा थे और उनके चरित्र की कथा सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ये समस्त राजा अद्भुत चरित्र वाले थे। यहां तक अन्य आचार्य गण कहते हैं, हरेर अंशांश जन्म न, ये सभी राजा महाराजा भगवान के ही अंश कला के विस्तार थे। भगवान ने अपनी शक्ति इन राजा महाराजाओं में निहित की थी जिससे प्रजाओं का पालन कर सके। अतः इन राजा महाराजाओं के चरित्र परम अद्भुत थे और इन राजा महाराजाओं के चरित्र को सुनकर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम उत्पन्न हो सकता है। अतः सुखदेव गोस्वामी ने यह बहुत अत्यंत आवश्यक समझा महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाना। इस नवम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जैसे कि हम सुनते आए हैं, मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन हो रहा है। मनु महाराज के एक परंपरा में उनके पुत्र के रूप में उस परंपरा में नाभाग जी हुए और नाभाग जी की परंपरा में भनंदन, वत्स प्रीति, प्रांशु, प्रमति, खनित्र, चाक्षुष, विविंशित, रंभ, खनी नेत्र, करंधम, अविक्षित और मरुत। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परंपराओं को गिना रहे हैं, बता रहे हैं। आइए गत दो श्लोक से हम प्रारंभ करें। विविंशति के पुत्र हुए रंभ और रंभ के पुत्र हुए खनी नेत्र, खनी नेत्र के पुत्र हुए करंधम और 26वें श्लोक में कहते हैं, तस्या विविक्षत सुतो यस्य मरुतस्य। उस करंधम के पुत्र हुए मरुत, मरुत के विषय में सुखदेव गोस्वामी दो श्लोक बताते हैं कि यह मरुत जो है बहुत सुंदर राजा हुए और इस राजा मरुत के द्वारा श्री अंगिरा मुनि के पुत्र संवर्त ने बहुत सुंदर अश्वमेघ यज्ञ कराया और यह अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप से हुआ और इस यज्ञ में मरुतस्य यथा यज्ञो न तथा अन्यस्य कश्चन। बोले अंगिरा मुनि के पुत्र संवर्त ने राजा मरुत के द्वारा ऐसा यज्ञ कराया, कहते न भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा यज्ञ भविष्य भूतकाल में किसी ने नहीं किया था। बोले कैसा यज्ञ था? सर्व हिरणमयम त्वासिद यत किंचित तस्य शोभनम। बोले उस यज्ञ में जितनी भी वस्तु ये लगी हुई थी, ये सभी वस्तु हिरण्यमयी सोने की बनी हुई थी। यजमानों के, ब्राह्मणों के बैठने के जो आसन थे सोने के थे, सब कुछ सोने से बना हुआ था और उस यज्ञ में साक्षात देवराज इंद्र पधारे थे। अब ये आज का श्लोक जो है मरुत राजा के द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ का वर्णन हो रहा है और उस यज्ञ में सब लोग जलसा कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पहले के जमाने में ये यज्ञ ही एक ऐसा अवसर होता था जिसमें लोग आनंद लेते थे। तो राजा मरुत ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में है, आज के श्लोक में वर्णन है, अस्माद्य इंद्र सोमेन दक्षिणाभिर द्विजातयः। उस यज्ञ में इंद्र आए थे, इंद्र के साथ अनेक देवता आए थे और इंद्र इस यज्ञ में आकर सोमेन सोम रस का पान किए। तो ये सोम रस जो है देवताओं का पेय, देवता लोग सोम रस पीते हैं और असुर लोग वारुणी पीते हैं, मदिरा पीते हैं। सोम रस के विषय में कई बार लोग शराब को ही सोम रस कह देते हैं। एक बार हम कमल प्रभु के चाचा के घर पर सूरत गए थे, बोले मेरे चाचा, हम लोग नगर संकीर्तन कर रहे थे, मुझे जब भी मैं सोम रस शब्द सुनता हूं मुझे वही दृश्य याद आ जाता है। नगर संकीर्तन कर रहे थे, बोले हमारे चाचा इधर ही रहते हैं, चलो चलो उनके घर जाते हैं। तो हम सब लोग उनके घर गए, उनके चाचा शराब की बोतल लेकर बैठे थे, शराब पी रहे थे। हम तो डर गए शराब को देखकर। तो चाचा को मिले, चाचा ने कहा सब लोग बैठ जाओ यहां पर, मेरे साथ सब लोग पियेंगे। तो कमल ने कहा हम लोग शराब नहीं पीते। बोले शराब नहीं, ये सोम रस है, सोम रस का पान करो। प्राय इस जगत में शराब को ही सोम रस लोग मान लेते हैं, परंतु सोम रस और शराब में जमीन आसमान का अंतर है। शराब को मदिरा कह सकते हैं, परंतु ये सोम रस जो है ताजे फ्रूट से बना हुआ जूस, हमारी भाषा में समझिए, देवलोक में बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, और उस फल का जूस समझिए, ये फल का जूस नहीं, फल का जूस होता है और उस जूस का जब एसेंस हो जाता है, उस जूस का भी जो सार होता है वो है सोम रस। मैं अभी अभी कमलचंद बाबू से पूछ रहा था, बोले वेदों में लिखा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य सोम रस पान करना है देवताओं के लिए, तो देवता लोग सोम रस का पान करते हैं जिससे उनकी शक्ति वर्धित होती है। परंतु इस श्लोक में ध्यान से सुनिए, अमाद्यत इंद्र सोमेन, ये सोम रस का पान करके इंद्र अमाद्यत माने मतवाला हो गया, मतवाला माने नशे में आ गया। बोले अमाद्यत इंद्र सोमेन, सोम रस पी के जूस पीकर कोई मतवाला हो जाए ये बात समझ में नहीं आ रही है। शराब पीकर लोग मतवाला हो सकते हैं, जूस पीकर सोमरस पीकर मतवाला हो जाए? भक्तों इस बात को हमें समझना होगा, चाहे सोमरस हो या कोई भी अच्छी खाद्य पदार्थ हो, जरूरत से ज्यादा यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित मतवाले हो जाते हैं। सिद्धांत यहाँ पर यह स्थापित हो रहा है, भले कितनी भी सुंदर वस्तु है सोमरस भी क्यों न हो, लेकिन यदि अति मात्रा में हो जाए तो वो भी मतवाला कर देता है। है? वो आप बताइए कभी। हाँ हाँ, यज्ञ की विशेषता बता। बहुत सुंदर गुड़ा के उन्होंने कहा, लेकिन इस सभा में कोई भी बोल सकता है। तो ये जो श्लोक है, जैसे मैंने कहा, यज्ञ की विशेषता बता रहे हैं। और इतना सुंदर यज्ञ था, इतना सुंदर यज्ञ था, होता है ना जब कोई अच्छा दृश्य देखते हैं, शराब और शबाब, जब कोई अच्छा दृश्य देखते हैं तो व्यक्ति को आनंद आ जाता है। आनंद के मारे इंद्र ने बहुत सोमरस पिया और सोमरस पीकर वो पागल हो गया। अमाद्यत माने सीधा लिखा है मतवाला हो गया, पागल हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक बात हमारे जीवन में उतारने लायक यह है कि सोम रस जैसा दिव्य रस भी क्यों न हो, यदि अति मात्रा में हम ग्रहण कर लेते हैं तो मतवाले हो जाएंगे। जीवन में ध्यान रखना चाहिए भजन करने के लिए युक्ता हार विहारस्य। हालांकि मेरे द्वारा यह प्रवचन होना ये ठीक नहीं है, और उपदेशामृत में भी कहा गया है अत्याहार प्रयासश्च, हम तो सीधे एक ही सिद्धांत कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आकंठ प्रसाद खाना चाहिए। भले प्रसाद भी हो लेकिन प्रसाद भी अति अल्प आहार और युक्त आहार, युक्त मात्रा में होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत के एकादश स्कंध में जहां भगवान दत्तात्रेय वायु को अपना गुरु बनाते हैं, प्राण वायु को, वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक साधक को कभी भी जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति अति मात्रा में है, वास्तव में ये अति वस्तु जो है सर्वत्र वर्जित। चाणक्य पंडित कहते हैं अति रूपा यथा सीता, सीता देवी का अति सुंदर रूप होने के कारण उसका हरण हो गया, नहीं तो कौन लेकर जाता था। अति रूपा यथा सीता, अति गर्वेण रावण, और अति गर्व होने के कारण रावण की मृत्यु हुई। अति दानात बलि बंधो, और बलि महाराज ने अति दान किया इसलिए तो बांधे गए बेचारे। अति सर्वत्र वर्जयत, अतः अति जो है सर्वत्र वर्जयत, अति नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। भौतिक की बात हो रही है और विशेष करके भोजन की बात हो रही है, भक्ति को छोड़कर जीवन में कभी भी अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र। हाँ भक्ति भी अति करेंगे तो भौतिक जीवन में तो कष्ट होगा ही। भौतिक लोगों के लिए सिद्धांत लगाया जा सकता है। तो जैसे तव कथामृतम शब्द की व्याख्या में एक आचार्य लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत के समान है, और हम तो कब की मर गई होती लेकिन आपकी कथा हमें जिला रही है। तव कथा अमृतम, और एक आचार्य उस संधि का विच्छेद अलग रूप से करते हैं, तव कथा मृतम, हे कृष्ण हम लोग हमारे भौतिक जीवन में बड़े अच्छे से जीती, आनंद से रहती, लेकिन जिस दिन से आपकी कथा सुनी है उस दिन से हम लोग मर रही है। तव कथा मृतम, हमें मारने वाली आपकी कथा है, है? तो अति ये सिद्धांत लगाया जा सकता है। खैर मैं ये कह रहा था अति आहार नहीं होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने प्राण वायु को अपना गुरु बनाया और जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन। चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि भोजन मात्र हमारे शरीर को टिकाने के लिए होना चाहिए, मात्र शरीर टिक जाए उतना भोजन करना चाहिए। तब प्रश्न उठाया गया, आचार्य जी प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ज्ञान है, समझ है, पढ़ते भी है, लेकिन भोजन की थाली जब सामने आती है तब कंट्रोल नहीं रहता है, क्या करें। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने एक बहुत सुंदर वस्तु बताई, बोले यदि अति आहार से बचना है तो मन में एक एक बात दृढ़ करके रख लेनी चाहिए कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें यही समझना चाहिए ये भोजन जो है हमारे लिए दवाई है। जैसे हम दवाई ग्रहण करते हैं, दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, उस प्रकार हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम जब दवाई पीते हैं तो शौक से पीते हैं, यहां चलो आज मूड हो गया क्रोसिन पी लेता हूं, नहीं। दवाई हम कब पीते हैं, जब रोग हो जाए, और वो भी रोग को दूर करने के लिए जबरदस्ती पीना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भोजन किस अवस्था में, बोले भोजन करने की इच्छा नहीं लेकिन भजन करने के लिए शरीर टिकाना है, और शरीर टिकाने के लिए क्या करें, भोजन करना पड़ेगा। दवाई लेते समय जितना अफसोस होता है, जो स्थिति होती है वही स्थिति भोजन के समय यदि करें, भवरोग लगा है। तो भवरोग को मिटाने के लिए जो दवाई लेनी, दवाई के समान। एक संत बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, इस संसार में तो साधकों को चाहिए भोजन से डरे, और ऊपर से किसी का निमंत्रण हो जाए तब तो सतर्क रहना चाहिए। वे दो साधक की बात बताएं, बोले एक साधक एक संत ऐसे थे जो वन में रहते थे। एक दिन की बात, राजा को इच्छा हुई कि संत को घर पर बुलाऊं और छप्पन भोग कराऊं। राजा ने निमंत्रण भेजा, जाओ उस संत को बुला कर लाओ, और यहां पर 108 भोग तैयार कर दिए। जैसे ही संत के घर पर राजा के पार्षद गए, उनके अनुचर गए, कहा राजा ने आपको दावत पर बुलाया है। जैसे ही संत ने सुना मुझे दावतपुर बुलाया है, वह संत जोर जोर से रोने लगे। बोले दावत पर बुलाया तो खुश होना चाहिए, वो भी राजा के घर पर 56, 100, 108 भोग होंगे। ये जोर जोर से रोने लगे। राजा के अनुचर ने सोचा ये तो केस बिगड़ गया। बोले मैं तो आया हूं बुलाने के लिए और नियोक्ता दिया तो रोने लगा। वे राजा के पास गया, राजा के पास गया और राजा को कहा राजन मैं तो गया था वहां पर, लेकिन जैसे उस संत को बुलाया तो वो जोर जोर से रोने लगे। ये सुनकर राजा रोने लगा। बोले इतनी मेहनत से 108 भोग मैंने तैयार किए उस संत के लिए, अभी दोनों रोने लगे। तब बाजू के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि चलो मांडवली करा देता हूं दोनों के बीच में। तब वो राजा उस संत के पास गए, बोले आखिर तुम रो क्यों रहे हो, कारण क्या है? तब उस संत ने इतना ही कहा कि राजा ने मुझे दावत दी है, उस राजा के घर पर जाने में आने में 2-2 घंटे बीत जाएंगे और उसमें भी राजा ने यदि कोई अच्छी आइटम अच्छा व्यंजन बनाया है और उस व्यंजन में मेरा मन अटक गया तो मेरी साधना से मेरे भजन से च्युत हो जाऊंगा। अतः ये राजा के वहां जो भोजन मेरी भक्ति में पतन कराने वाला है, अतः मैं राजा के घर पर नहीं जाना चाहता। एक वो साधक और एक आज के साधक। आज के साधक कैसे हैं वो संत बताते हैं। बोले आज के साधक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोजन करते हैं और ऐसा भोजन करते हैं कि दूसरी बार मिलने वाला नहीं है, ये सोचकर। अब मेरी बात करो, भोजन करते समय यही ख्याल होता है दूसरी बार मिलेगा नहीं मिलेगा, कर लेते हैं। शाम को 8 बजे पेट भरकर भोजन करके वो दोनों बैठे थे और पूरा पेट भरा हुआ था। उस समय ही दरवाजे पर बेल बजा, पुत्र ने दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोलने में भी 10 मिनट लगाई, पेट भरा हुआ था, खड़े होने में गया, दरवाजा खोला, कहा कि हमारे घर पर 56 भोग बनाए हैं, आप और आपके पिताजी दोनों भोजन करने के लिए आइए। तब वो लड़का जो था दरवाजे के ऊपर खड़ा खड़ा पिताजी को बोला, पिताजी ऊर्ध्वम गच्छन्ति डकारा, ऊपर से डकार आ रही है और आगे भी कहा पार्श्व गच्छन्ति, ऊपर से भी डकार आ रही है, हवा निकल रही है और पीछे से भी पेट पूरा भरा हुआ है और दरवाजे पर दावत खड़ी है। पिताजी क्या करूं, ये जो हमें भोजन के लिए बुलाने आए हैं क्या कहूं, इसको क्या जवाब दूं? पिताजी ने कहा जन्म और मृत्यु तो बार बार मिलते रहेंगे, पुनरपि जन्मम, श्लोक दिया पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु तो बार बार मिलेंगे लेकिन बेटा ऐसी दावत फिर से कभी नहीं मिलेंगी, उनको हाँ बोल दो। ये है आज के साधक। साधक को चाहिए जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी उपदेशामृत के परपोट में लिखते हैं जिह्वा उदर और उपस्थ, ये तीनों इंद्रिया एक लाइन में है। यदि हमने हमारी जिह्वा को वश में कर लिया तो उदर वश में हो जाएगा और उदर वश में हो गया तो जननेन्द्रिया वश में हो जाएगी और जननेन्द्रिया वश में हो गई तो हमारी समस्त इंद्रिया वश में हो जाएगी और जिससे भगवान की प्राप्ति तुरंत आसानी से हो जाएगी। अतः अति आहार नहीं करना चाहिए, फिर सोम रस भी क्यों ना हो। यहां पर इंद्र सोम रस का पान करके अमाध्यत मतवाले हो गए और इसी के साथ साथ आगे कहते हैं अमाध्यत इंद्र सोमेन। ये अमाध्यत शब्द सबके लिए लगेगा, सोम रस का पान करके इंद्र मतवाले हो गए और अमाध्यत द्विजातय दक्षिणाभि, और द्विजातय ब्राह्मण भी दक्षिणा को ग्रहण करके अमाध्यत मतवाले हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये अमाध्यत शब्द ब्राह्मणों के लिए भी लगेगा। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर अमाध्यत हो गए, अमाध्यत माने मतवाले हो गए। इस संसार में ब्राह्मणों का कर्म है पठन पाठन यजन याजन शम दम तप शोच शांति ऊर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान में रचे रहना और केवल ज्ञान में ही नहीं उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना, विज्ञान और यह करते हुए संसार से कुछ भिक्षा मिले, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी थोड़ा बहुत धन मिल जाए उससे जीविका चलाए, यह ब्राह्मणों का कर्म है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण जरूरत से ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए संसार में लोगों से धन एकत्रित करता है तो वह धन को एकत्रित करके ब्राह्मण भी मतवाला हो जाता है, ब्राह्मण होते हुए भी। और आज संसार में यही स्थिति देखी गई है, अपनी इंद्रियावश में नहीं होने के कारण ब्राह्मण गण भी धन एकत्रित करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और उस धन से मतवाले हो जाते हैं। ब्राह्मणों का कर्म ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण रूप से रचे पचे होना चाहिए, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। संसार में कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो कर्म कांड करते हैं, परंतु ये कर्म कांड भी एक दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही माना जाता है। इंद्र तृप्ति करने, उच्च इंद्र तृप्ति करने के लिए संसार में लोग कर्म कांड करते हैं और कराते हैं। ब्राह्मण गण संसार के लोगों को इस संसार की, संसार के सुख या स्वर्ग के सुख की प्राप्ति कराने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और उस यज्ञ हवन के द्वारा स्वयं अपनी जेब भरते हैं। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई है, मंत्र की कोई शुद्धता पवित्रता नहीं है, वे भविष्य देखते हैं तो उनमें भी कई सारी त्रुटियां होती हैं, और ऐसी त्रुटियां करने के बाद भी ये ब्राह्मण गण लोगों से धन एकत्रित करते हैं। तो कहते हैं दक्षिणा भी, दक्षिणा ग्रहण करके ब्राह्मण मतवाले हो गए। तो ब्राह्मणों को चाहिए, या जो लोग ब्राह्मणों के कर्म करते हैं उनको चाहिए कि कभी भी दक्षिणा ग्रहण न करें। और मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं और हमारी जीविका किसी और लोगों के ऊपर आश्रित है, तब भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे दक्षिणा ले रहे हैं क्या वह दक्षिणा शुद्ध है। यदि कोई पाप करके धन कमा रहा हो और उस धन को कमाने में बहुत पाप हो रहा हो, और ऐसे पापी व्यक्ति का धन यदि हम दक्षिणा के तौर पर लेते हैं और उस धन से हम हमारी जीविका चलाते हैं या भोजन करते हैं, तो उस व्यक्ति के किए गए पाप का फल हमें भुगतना होता है। इसलिए प्राय देखा गया है कुछ लोग शुरुआत में बहुत विरक्त होते हैं, वैरागी होते हैं, परंतु आगे चलकर किसी के धन के ऊपर जब आश्रित हो जाते हैं और उसमें भी किसी पापी व्यक्ति का धन आ जाता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, तब देखा जाता है वो वैरागी परम उन्नत व्यक्ति भी अपने स्थान से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। धन किसी का ग्रहण करना है तो वह भी शुद्ध धन होना चाहिए। हम भगवद गीता में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं कथम भीष्म महम संखी द्रोणस्य मधुसूदन, हे मधुसूदन कृष्ण मैं द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को कैसे मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसलिए मारना है क्योंकि वो लोग दुर्योधन का पक्ष लेकर बैठे। और वास्तव में महाभारत में और भागवत में भी वर्णन है कि पितामह भीष्म महाभागवत स्वयंभू नारद शंभु 12 महाजन्मे पितामह भीष्म की गिनती हुई। ऐसे पितामह भीष्म भगवान को पूर्ण रूप से जानने के बाद भी अधर्म का पक्ष क्यों लिए, और क्यों पितामह भीष्म द्रौपदी जो भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, इतना अधर्म हो रहा था फिर भी पितामह भीष्म कुछ नहीं बोले, कारण क्या था। पितामह भीष्म महाभारत में यह प्रसंग का वर्णन है, जब पितामह भीष्म पांडवों को ज्ञान दे रहे थे राजधर्म दान धर्म स्त्री धर्म, उस समय द्रौपदी हंसने लगी और हंसकर पितामह भीष्म को पूछने लगी। पितामह भीष्म बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, लेकिन यही ज्ञान कुरुवंश की सभा में जब मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैं आपके पास आई थी, तब ये आपका ज्ञान कहां गया था, तब आपके पास ज्ञान नहीं था। पितामह भीष्म ने इतना ही कहा कि तब भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूं, परंतु बेटी अंतर इतना है कि उस समय मैं दुर्योधन के अन्न के ऊपर, दुर्योधन के धन के ऊपर निर्भर था, और दुर्योधन पापमयी था, और उस पापी का अन्न खाने से मेरी रगों में वह पाप दौड़ रहा था, और इसीलिए उस समय मैं रोक दुशासन को रोक नहीं पाया, लेकिन आज तुम्हारे पति अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से मेरे शरीर को बींध दिया है, मेरे शरीर से वह दुर्योधन के पापमय अन्न का सारा खून जब निकल गया, तब आज मुझ में बुद्धि आई और मैं यह प्रवचन कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, अन्न जो है शुद्ध व्यक्ति का होना चाहिए। ब्राह्मण को भी यदि किसी से दक्षिणा लेनी है तो किसी शुद्ध व्यक्ति से लेनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण का भी पतन हो सकता है। और दक्षिणा कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा दक्षिणा होने पर अमाज्यत मतवाला हो जाता है ब्राह्मण, पैजामा से बाहर हो जाता है, फिर वह उस ब्राह्मण को केवल धन ही दिखाई देता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को एक थोड़ी सी दृष्टि जा सकती है कि ब्राह्मण धन लेकर अमाद्यत हो जाते हैं, तो हम भी टेंपल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मंदिर के लिए डोनेशन एकत्रित करेंगे, और ज्यादा डोनेशन एकत्रित हो गया तो क्या हम भी मतवाले हो जाएंगे, हम भी मतवाले हो जाएंगे। मैं दो तीन दिन पहले सुन रहा था एक भक्त के मुख से कि एक बार प्रभुपाद जी के पास कुछ भक्त आए और एक फोटो लेकर आए। किसका फोटो था? बोले एक भारत का ही एक संत था, उस संत के सामने करोड़ों रुपये की गड्डी पड़ी थी, 500-500 के बंडल थे और करोड़ों रुपये उनके सामने थे, और वो करोड़ों रुपयों को ठुकरा रहा था, ऐसे करके फोटो खींचा हुआ था, पैसे को ठुकरा रहा था। और किसी ने ये फोटो खींचा और श्री प्रभुपाद जी के पास लेकर आए, प्रभुपाद जी देखिए करोड़ों रुपये को ये ठुकरा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा यदि कोई 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपया देता है और मैं ऐसे में बैठूंगा और आप लोग फोटो खींच लो और पेपर में छाप दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसे जो है मैं कृष्ण के लिए और कृष्ण के मंदिर के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस संसार में उमाद्यत दक्षिणा द्विजातय, वही ब्राह्मण वही भक्त पैसों से और दक्षिणा से मतवाले हो जाते हैं जो अपने लिए कलेक्शन करते हैं, जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लोगों से धन एकत्रित करते हैं, वो लोग मतवाले, निश्चित रूप से मतवाले हो जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए, भगवान के मंदिर के लिए, भक्तों के लिए यदि कोई किसी से पैसे ग्रहण करते भी हैं तो वो कभी भी अमाद्यत, हाँ अमाद्यत होते हैं, मतवाले होते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति में मतवाले हो जाते हैं, कृष्ण के प्रेम में मतवाले हो जाते हैं, जो लोग कृष्ण के लिए, कृष्ण के मंदिर के लिए पैसे ग्रहण करते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण के स्तर पर भी यदि जीवन आजीविका चलाने के लिए दक्षिणा ग्रहण करनी है, फिर भी ध्यान रखना चाहिए किसी पापी व्यक्ति का धन ना आ जाए। तो यहां पर अमाद्यत दक्षिणा भी अजातय, और आगे कहते हैं मरुत परिवेष्टार। ये आज के दिन में हमारा बहुत बड़ा प्रश्न रहा, मरुत परिवेष्टारो, ये यज्ञ का वर्णन हो रहा है। इस यज्ञ में इंद्र सोमरस का पान कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले रहे हैं, और मरुत गण जो है परिवेष्टारो, मरुत जो है भोजन परोस रहे हैं। आचार्य गण लिखते हैं पत्थर भोजन इत्यादि परोस रहे हैं। अब हमारा प्रश्न यहां पर यह था, मैं सुबह से ही सबके पीछे पड़ा हूं कि यहां पर मरुत गण यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ किसका है? राजा मरुत का। ये यज्ञ राजा मरुत का है और मरुत परिवेष्टारो, और मरुत गण जो है भोजन परोस रहे हैं। अब हमारा प्रश्न यह था कि ये मरुत है कौन? तो वास्तव में ये मरुत और कोई नहीं, ये मरुत जो है दीति के पुत्र मरुदगण है। बोले कारण यह है कि पहली बात तो यहां पर मरुतह शब्द जो है बहुवचन में, अर्थात एक मरुत नहीं बहुत सारे मरुत, और अभी परंपरा में जो बात चल रही है वो मरुत राजा की बात चल रही है। तो मरुत राजा जो है यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मरुत गण जो है दीति के पुत्र मरुत गण भोजन परोस रहे हैं। तब तुरंत हमारा और एक प्रश्न हो सकता है कि देवता का यज्ञ है और इस देवता के यज्ञ में दीति के पुत्र क्या कर रहे हैं? सदैव देखा गया है कि जब जब देवता लोग यज्ञ करते हैं तो दीति के पुत्र अर्थात दानव अर्थात असुर उस यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। तो देवता के यज्ञ में यहाँ पर मरुतगण परिवेष्टारो भोजन परोस रहे हैं, इसका कारण इसके पीछे भागवत के छठे स्कंद में बहुत सुंदर कथा है। यद्यपि ये मरुतगण दीति के पुत्र है, जिस दीति से असुरों का जन्म हुआ है, परंतु कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरणाकश्यपु का वध किया, तब ये दोनों हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु दीति के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु होने पर दीति को बहुत शोक हुआ। मां का हृदय है ना, मां का हृदय होता है, पुत्र कैसा भी हो, पुत्र को कुछ भी हो जाए तो मां को बहुत कष्ट होता है। दीति को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। और एक दिन कश्यप जी घर पर आए और दीति ने कश्यप जी को कहा कि हे पतिदेव, मुझे आपसे कुछ चाहिए, आज मेरे हृदय में कुछ कामना हो रही है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तब कश्यप वाच, कश्यप जी ने पता है क्या कहा, वरम वरय वामोरु, हे सुंदरी, प्रतिष्ठे अहम निंदिते, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी निकाल नहीं सकता है, तुम इतनी सुंदर हो। अब तुरंत कश्यप जी कमी निकालेंगे, बोले स्त्रिया भर्तरी सुप्रीते काम इह चागम, बोले हे प्रिय, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसकी कामना अपनी पति की सेवा करने पर, जिसकी इच्छा इस पृथ्वी पर अधूरी रह जाती है। पति रेव ही नारी नाम, एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए पति ही उनके लिए भगवान होता है। एक नारी को अपने पति को भगवान का स्वरूप समझकर, भगवान का अंश समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाए। हे दीति, क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। जब ऐसा कहा तब दीति वाच, तब दीति कहती है, वरदो यदि मैं ब्रह्मन, हे पतिदेव, यदि आपको मुझे वरदान देना ही है तो पुत्रम इंद्र हणम वृणे, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्रम हणम, जो इंद्र का हनन करे, जो इंद्र का वध कर दे, क्योंकि उस इंद्र के कारण ही विष्णु अवतार लेकर मेरे पुत्र को मारते रहते हैं। इंद्र यारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे, आप मुझे वरदान दीजिए कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मुझे जन्म हो। अमृत्युम मृत पुत्राहम येन मे धातितो सुतो। इस प्रकार से जब दीति ने कश्यप जी से इंद्र को मारने वाला, क्योंकि इंद्र भी कश्यप जी का ही पुत्र है, अदिति के, अदिति से इंद्र हुए। कश्यप जी की ये अदिति और दीति दोनों कश्यप जी की पत्नी थी। अदिति से जितने भी पुत्र हुए सब देवता हुए और दीति से असुर हुए। तो कश्यप जी ने जब यह सुना, निशम्यो तद वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत, ये वचन सुनकर कश्यप जी के हृदय में बहुत दुख हुआ, हृदय तपने लगा, अफसोस होने लगा। अहो अधर्म सुमहान अद्य में सुपस्थित, हो आज मेरे सामने अधर्म आकर खड़ा रह गया है। तब लेकिन कश्यप जी बहुत बुद्धिमान थे, एक गृहस्थी को कैसे रहना कश्यप जी बता रहे हैं, सीधा मुंह पर नहीं कह दिया जाओ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कश्यप जी समझ गए कि ये इसके हृदय में ईर्ष्या आ गई है, द्वेष आ गया है। लेकिन कश्यप जी बहुत सुंदर ऑपरेशन किए, बोले हाँ तुमने जो मांगा है बहुत अच्छा है, लेकिन ये तुम्हें तब मिल सकता है जब तुम व्रत करोगी। बोले बताओ पतिदेव, मैं व्रत करने के लिए तैयार हूं। बोले तुम्हें एक वर्ष के लिए व्रत करना होगा। बोले कोई बात नहीं। बोले कौन सा व्रत? बोले पुंसवन व्रत, एक वर्ष के लिए व्रत, और इस व्रत में निरंतर भगवान का नाम लेना है, भगवान का ध्यान करना है, भक्तों को भोजन कराना है, अनेक वस्तु का निरूपण किए, और स्वच्छ रहना है, तीन बार स्नान करना है, भोजन के बाद अपना मुंह स्वच्छ रखना है। इस प्रकार से व्रत की विधि का वर्णन किया और कश्यप जी के द्वारा दीति के गर्भ में एक संतान आई और एक वर्ष के लिए व्रत प्रारंभ किया और यह बात देवराज इंद्र को पता चली। देवराज इंद्र को पता चलने पर बोले, दीति के गर्भ में मुझे मारने वाला शिशु पल रहा है। देवराज इंद्र उस समय ही शूद्र का रूप धारण करके वहां पर पधारे और दीति के वहां झाड़ू मारने की इत्यादि सेवा करने लगे। रोज प्रतिदिन देवराज इंद्र सेवा करते थे। सेवा करते 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 एक दिन की बात, एक वर्ष तक तपस्या करके दीति का शरीर क्षीण हो गया। अब कुछ लोग पयोव्रत शुरू किए हैं, दो तीन दिन के बाद पता चलेगा, शरीर क्षीण हो जाता है, फिर उठने की शक्ति नहीं रहती है। तो एक दिन दीति ने भोजन किया और भोजन करके मुंह धोने का और हाथ पांव धोने की शक्ति नहीं हुई और उसी समय उच्छिष्ट भोजन खाकर जूठा मुंह छोड़कर दीति सो गई। इंद्र ने अवसर देखा और अवसर देखकर इंद्र उस मुख के द्वारा दीति के गर्भ में चले गए और दीति के गर्भ में जाकर इंद्र ने अपने वज्र का, बोले यही मुझे मारने वाला है, इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र में भक्तों छह धार है, धार होती है ना, इंद्र के वज्र में छह धार है। इंद्र ने जैसे ही वज्र का प्रहार किया तो उस गर्भ में जो बालक था उसके सात टुकड़े हो गए, सात भागों में बढ़ गया। लेकिन ईशानुग्रह, याद रखिए, ये भागवत का नवम स्कंध जो है, ईश अनुग्रह, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसका बाल विवाह का नहीं हो सकता है। उस एक गर्भ सात गर्भ में बट गया और अब तक एक बालक था, अब सात बालक हो गए। इंद्र डर गया, बोले अब तक एक शत्रु था, अब सात शत्रु हो गए। तब इंद्र ने अपने वज्र का प्रत्येक बालक के ऊपर प्रहार किया। तो भगवान की कृपा से प्रत्येक बालक के सात आठ टुकड़े हो गए, 7 × 7 = 49। उस दीति के गर्भ में यह घटना घट रही थी और एक बालक के 49 अंश हो गए और 49 बालक 49 बालक उत्पन्न हो गए। और वो बालक कहने लगे कि भाई मुझे मारो मत, और इंद्र के इस प्रहार से सब लोग रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, रोने की आवाज आई, इंद्र को टेंशन आया कि वो जग जाएगी। तब इंद्र ने कहा, रो मत रो मत, मां रोदती मां रोदती मां रुत, रुत माने रोना, मां माने नहीं, मां रुत, रो मत। इंद्र ने उनको मां नहीं रुत माने रो कहने पर उनका नाम ही हो गया मारुत, मारुतगण, मरुतगण, 49 मरुतगण प्रकट हुए। इंद्र कांप गया और अब क्या करे क्या करे। तब इंद्र 49 मरुदगणों को लेकर बाहर आया और बाहर आकर 49 भाइयों के साथ खड़ा रह गया और उतने में दीति की नींद उड़ गई। जैसी दीति की नींद उड़ी, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने पुत्र के साथ इंद्र को देखकर दीति को प्रसन्नता हुई। दीति को प्रसन्नता हुई कि चलो इंद्र शत्रु है, इंद्र मेरे पुत्र हिरण्यकश्यपु को मराया लेकिन मेरे बालकों के साथ खड़ा है। तब दीति ने पूछा, सच सच बताना इंद्र, सत्य कहना कि जब मैं सो रही थी तब क्या हुआ। भक्तों, इंद्र में बहुत सारे दोष हैं, हम मानते हैं भागवत में सबसे ज्यादा दोष इंद्र के बताए गए हैं, लेकिन इंद्र में एक गुण है, कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र ने सच सच बात बताई कि हे मौसी जी, ये मौसी थी दीति जो थी इंद्र की मौसी थी, मौसी जी मुझे भय था कि आपके गर्भ में मुझे मारने वाला बालक उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भय से मैं आपके गर्भ में चला गया और मैंने उसका वध किया तो भगवान की कृपा से वे सात बालक हो गए और सातों को मारा तो 49 हो गए। जब 49 हो गए तब मैं यहां पर बाहर आया। भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र के इस सत्य भाषण के कारण दीति के हृदय में इंद्र के प्रति जो शत्रुता थी, जो द्वेष भाव था, वह सारी शत्रुता सारा द्वेष भाव निकल गया। दीति जैसी दैत्यों की असुरों की माँ के हृदय में इंद्र के प्रति जो गलत भावना थी, वह गलत भावना कैसे निकली? इंद्र के मुख से सत्य भाषण सुनकर। भक्तों, इस संसार में जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह असुर क्या, असुरों की मां को भी जीत लेता है। सत्य, भागवत में उद्धव जी ने पूछा, हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा वीर कौन है, कह वीर। तब भगवान ने यही कहा, सबसे बड़ा वीर इस संसार में और खास करके कलयुग में वही है जो सत्य बोलता है। आज तो कदम कदम पर झूठ। ये मोबाइल आ गया है, कोई पूछता है कहां पहुंचो, मलाड पहुंच गया, पहुंचा है गोरेगांव। कदम कदम पर झूठ, अपनी बात को बनाने के लिए प्राय दिन में हजारों झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वीर वो है जो सत्य बोले। इंद्र ने सत्य बोलकर, सत्य भाषण करके दीति को जीत लिया और दीति प्रसन्न हो गई। और इंद्र ने कहा कि अब ये 49 मरुदगण को मैं मेरे साथ लेकर जाऊंगा। दीति ने कहा बहुत बढ़िया। तब उस दिन से इंद्र वे 49 मरुदगण को स्वर्गलोक में लेकर चले गए। अब इंद्र स्वर्गलोक में लेकर चले गए और ये जो मरुत राजा थे उन्होंने यज्ञ संपादन किया और उस यज्ञ में इंद्र ये 49 को लेकर आए होंगे, 49 मरुदगणों को लेकर आए होंगे। इंद्र सोमपान करने लगे, ब्राह्मण दक्षिणा में पड़ गए और वो जो 49 मरुदगण थे सोचे ये मरुत राजा का यज्ञ हो रहा है, चलो हम लोग सेवा करेंगे। तो ये मरुदगण जो है सेवा में लग गए। इसलिए कहते हैं मरुत परिवेशतारो। और बहुत बहुत विचार करने के बाद यह भी पता चलता है कि इंद्र मतवाला हो गया, ब्राह्मण मतवाला हो गया, लेकिन मरुदगण मतवाले नहीं हुए। ये जो अमाध्यत शब्द मरुदगण के लिए नहीं है, इससे हमारे जीवन में यह भी उपदेश मिलता है कि जो लोग अति आहार अति वस्तु करेंगे वो मतवाले हो जाएंगे, जो लोग अति दक्षिणा लेंगे वो भी मतवाले हो जाएंगे, लेकिन जो लोग सेवा करेंगे, परिवेशतारो, जो लोग सेवा करेंगे वो कभी भी मतवाले नहीं होंगे, वो अपने स्वरूप में स्थित होंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। और अंत में कहते हैं विश्व देवा सभा सद, और विश्व देव आए थे और बहुत सारे सभासद आए थे। सभासद के अर्थ आचार्य गण दो तीन अर्थ लिखते हैं। सभासद माने जिसको सभ्य आसन, जिसको सभ्य आसन के ऊपर विराजमान किया जाए उसे सभासद कहते हैं, या जो सभ्य हो उसे सभासद कहते हैं। जो सभा में बोलने योग्य हो, जो सभा में बैठने योग्य हो, सभा में किस प्रकार से बैठना है ये भी एक विधि होती है, है? अब सभा लगी है और मैं यहां आराम से बैठ जाऊं तो ये है? इसे सभ्य नहीं कहा जाएगा, है? सभासद माने सभा में बैठने योग्य, सभा में किस प्रकार से बोलना, कैसा प्रेजेंटेशन होना, उसे सभासद कहा जाता है, सभ्य। तो इस प्रकार से ये सभासद थे, विश्वदेव थे, ये सब लोग थे। सब लोग मतवाले हुए, मरुदगण मतवाले नहीं हुए क्योंकि सेवा में लगे थे। इस संसार में जो लोग सेवा में लगे रहते हैं वे निश्चित रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, भगवान को प्राप्त करते रहते हैं। अतः हम सबको सेवा में लगे रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी को पूछा जाता था भक्ति का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी यही कहते थे भगवान की प्रेममयी सेवा, एक्टिव डिवोशनल सर्विस, यही है भक्ति। तो हमें भी सेवा में लगे रहना चाहिए। आप सब तो लगे हुए हो, आप सबके चरणों में प्रार्थना, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की और आप जैसे भक्तों की सेवा में लगा रहूं और भगवान की भक्ति में स्थित हो जाऊं। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। कुछ त्रुटियां रह गई हो क्षमा कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, गौर प्रेमानंदे।